الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج جمعرات کا دن ہے، اور جیسے کہ آپ کو میں پہلے بتا چکی ہوں کہ اس دن ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس قسم کے اعمال آگے بھیج رہے ہیں. کل ہم نے بات کی تھی کہ کہیں ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، تو ہم بندوں کے حقوق صحیح سے ادا کریں، ان میں کمی نہ آئے، ان کو ان کے حقوق سے محروم نہ کریں. اور امید ہے کہ آپ نے اس میں غور کیا ہوگا اور انسانوں کے لیے خیر کا باعث بنے ہوں گے، یا کوشش کی ہوگی، اس کی طرف ایک قدم اٹھایا ہوگا کہ میری ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے. کیونکہ جو خیر والا انسان ہوتا ہے نا، نیک انسان، وہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے لیے زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی. وہ زمین جہاں وہ نیکیاں کرتا تھا، جہاں وہ سجدے کرتا تھا، اس کے لیے روتی ہے، اور آسمان جہاں سے اس کی نیکیاں اوپر چڑھتی تھی وہ روتا ہے. تو بڑا خوش قسمت ہے کہ جس کے جانے کے اوپر لوگ تو روئیں مگر زمین و آسمان بھی روئے. اگر یہ تبھی ہے نا کہ جب انسان خیر بانٹنے والا ہو، جدھر رہیں، جدھر بسیں، جدھر جائیں، جدھر بھی آپ کام کریں، جن کے قریب ہوں، ارد گرد والوں کو اپنی خیر سے مستفید کریں. اور آج تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سے عمل اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج رہے ہیں. جب میرے عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچے گا تو وہ کیسا ہوگا، کس کوالٹی کا ہوگا، کیا سٹینڈرڈ ہوگا اس کا؟ کیا لو گریڈ، لو سٹینڈرڈ کی نیکیاں کرتی ہوں میں، یا ہائی سٹینڈرڈ کی کرتی ہوں؟ آپ سوچیں گے کہ نیکی میں بھی کیا کوئی سٹینڈرڈ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ہم کپڑوں میں کوالٹی دیکھتے ہیں نا، پکڑ پکڑ کے دیکھتے ہیں، پھر خریدتے ہیں. گھروں کے سٹینڈرڈ دیکھتے ہیں، گاڑیوں کے دیکھتے ہیں، زیور کا دیکھتے ہیں. نیکی کا کیا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہوگا؟ نیکی کا بھی ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے. جیسے مثلاً ایک روزے کو ہی آپ لے لیں، ہمارا روزہ کس سٹینڈرڈ کا ہے کبھی سوچا آپ نے؟ ایوریج ہے، گڈ ہے، ایکسیلنٹ ہے، کیا ہے؟ ایوریج وہ روزہ ہے جیسے بچے بھی رکھتے ہیں. بچے کیسے روزہ رکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں، کھانے پینے سے پرہیز کر لیتے ہیں، اور کبھی کارٹون دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی گیم کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں. ان کو اس سے آگے نہیں پتا، ان کو یہ بس پتا ہے کہ کھانا پینا نہیں ہے. تو بعض لوگ بھی سارا دن یہی کرتے رہتے ہیں کہ گزارے والا روزہ، ایک ایوریج روزہ، ایک عام سٹینڈرڈ کا روزہ رکھتے ہیں کہ کھانے پینے سے تو پرہیز کیا، اور اس کے بعد کبھی فون ملا لیا اور گھنٹوں بات شروع کر دی، کبھی بغیر سوچے سمجھے زبان چلاتے رہے، کبھی کہیں ڈرامہ دیکھنے بیٹھ گئے، کبھی سوشل میڈیا پہ گھنٹوں لگا دیے، پھر جب دیکھا کہ بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا افطاری میں تو پھر اٹھ کے افطاری بنا لی. یہ بچوں والا روزہ ہے نا، بچے بھی اتنا ایسا ہی اسی سٹینڈرڈ کا روزہ رکھتے ہیں. اگر ہم بڑے بھی اسی سٹینڈرڈ کا رکھیں تو کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، روزہ تو ہے مگر بہت اعلیٰ کوالٹی کا نہیں ہے. اس کے بعد اس سے اپر گریڈ کا روزہ ہے، اس کی کوالٹی زیادہ اچھی ہے، سٹینڈرڈ کا ہے، جس میں آپ کھانے پینے سے تو پرہیز کرتے ہیں مگر آپ اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنی زبان کو بھی سنبھال کے چلاتے ہیں، اپنے ہاتھوں پیروں کا بھی آپ خیال رکھتے ہیں کہ ان سے کوئی ایسے غلط کام نہ ہو، کانوں کو بھی سنبھالتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہ چلی جائے جو کہ غلط ہو، اور سارے ہی اعضاء کو گناہوں سے بچاتے ہیں. تو یہ اپر گریڈ کا ہو گیا، ٹھیک ہے، سٹینڈرڈ اس کا زیادہ اچھا ہے، اس کی کوالٹی زیادہ اچھی ہے. اور ایک اس سے بھی اوپر سٹینڈرڈ کا ہے، تو بڑی وی آئی پی قسم کا روزہ ہے، جس میں انسان اپنے دل کو بھی فضول خیالات سے اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز غافل کرتی ہے اس سے بچا کے رکھتا ہے. और अल्लाह की याद के सिवा हर चीज़ इंसान रुक जाता है, यानी सारा दिन सिर्फ अल्लाह की याद है बस। अब वो याद ज़रूरी नहीं आप ज़ुबान से ही करें, कभी दिल में अल्लाह से बातें कर रहे हैं, कभी ज़ुबान से, कभी ऐसे अमल करके। तो ये सोचें हम कि जब हर चीज़ में हम अपने लिए तो बेस्ट क्वालिटी चाहते हैं, कोई हम में से ये नहीं चाहता कि हम घटिया क्वालिटी का कपड़ा पहने या एवरेज भी पहने, सबसे अच्छा देखते हैं, कई दफा पकड़ पकड़ के देखते हैं। तो क्या अल्लाह ताला के हम एवरेज किस्म के आमाल भेजेंगे या VIP वाले भेजेंगे? तो ये 29-30 दिन की सिर्फ बात है, इसमें क्यों ना हम हाई स्टैंडर्ड अटेन करें इबादात में, सभी इबादात में, सिर्फ रोजे की बात नहीं है। बाकी साल तो हम गुजारे लायक ही अमल करते हैं, मगर इस महीने को तो स्पेशल बनाए। जिक्र भी ऐसा होना चाहिए जो एक्सेलेंट स्टैंडर्ड का हो, नमाज भी वो हो कि जिसमें इतना खुशू हो, जिसमें इतनी क्वालिटी हो ऐसे कि हमने उससे पहले थोड़ी तैयारी भी की हो, थोड़ा अपने आप को उसके लिए एक तमाम, जैसे आप कहीं जाने लगते हैं लेकिन ऑफिस के लिए भी लोग तैयार होते हैं, तो जरा ऐसे नहीं करते कि घर के ऐसे ही कोई भी कपड़े पहने, जरा एहतमाम करते हैं ना। तो रब्बुल आलमीन से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा तो एहतमाम इंसान करे कि साफ सुथरे कपड़े पहन ले, वुजू अच्छी तरह से कर ले, आपको कोई मेकअप नहीं करना, आपको कुछ नहीं, मगर वुजू अच्छा करें आप, वही आपका मेकअप है मुलाकात करने का अल्लाह ताला के साथ। फिर ऐसी जगह आपने इख्तियार करनी है जहां पे खामोशी हो, शोर हंगामा ना हो, अव्वल वक्त में नमाज पढ़नी है कि नमाज का अजर ज्यादा मिलता है उस वक्त में जो अव्वल होता है। अव्वल वक्त मतलब है कि जैसे अजान हुई है 10-15 मिनट तक आप पढ़ लें, ये नहीं है कि अगर जोहर का टाइम 3-4 घंटे का है तो आप 2 घंटे गुजार के पढ़ें या तीसरे घंटे में पढ़ें या बिल्कुल ही खत्म होने वाला टाइम तब पढ़ें, वो तो तब भी जाएगी, लेकिन उसका स्टैंडर्ड क्या होगा? समझ आई? तो हर चीज में एक एक्सेलेंस का स्टैंडर्ड है, एक आला क्वालिटी है। तो सिवाय इशा की नमाज के हर नमाज को उसके अव्वल वक्त में पढ़िए। इशा की नमाज के लिए पसंदीदा यही है कि उसको थोड़ा सा डिले कर लें, ये भी नहीं कि आप आधी रात के बाद ही पढ़ना शुरू कर दें, मगर आधी रात तक से पहले पहले आप पढ़ लें, अगर फौरन आप पढ़ें तो अफजल होगा। ऐसे नहीं कि कोई इसमें बुराई नहीं, मगर अफजल है कि आप जरा सा डिले कर लें। तो जैसे हम नमाज की क्वालिटी बढ़ाएंगे, रोजे की क्वालिटी बढ़ाएंगे, अखलाक की भी क्वालिटी बेहतर करेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन अपने उम्दा अखलाक की वजह से रातों को कयाम करने वाले और रोजेदार का मकाम हासिल कर लेता है। यानी अच्छा अखलाक, गुड मैनर्स, ये इतनी ऊपर तक इंसान को पहुंचा देती है कि वो रोजा रखने वाले और कयाम करने वाले, रातों को तहज्जुदें पढ़ने वाले, उनके बराबर मकाम ले लेता है। जो लोग रोजा रख लें उसके बाद अखलाक भी अच्छे कर लें तो कितनी जबरदस्त बात है, VIP रोजा हो गया। और जो लोग रोजा नहीं रख पा रहे किसी भी उजर की वजह से, वो भी अखलाक अच्छा कर ले तो देखें कितना बड़ा मकाम पा सकते हैं। तो हर चीज में क्वालिटी देखें, क्या हम चाहते हैं कि जब हमारे अमल अल्लाह ताला के सामने पहुंचे तो उसमें बदअखलाकियां हों, उसके अंदर लोगों से मुंह मारियां हों, उसके अंदर लोगों से नाराजगियां हों? तो ये नहीं होना चाहिए। अब देखें आज के दिन हदीस में आता है कि एक, मैंने आपको बताया ना, मंडे और थर्सडे होता है 2 दिन है जिस जब आमाल पेश होते हैं। तो मुस्लिम में वो हदीस आती है कि हर हफ्ते में 2 मरतबा पीर और जुमेरात के दिन लोगों के आमाल अल्लाह के सामने पेश होते हैं। हर बंदा है मोमिन, जो मोमिन है यानी जिसे जो शिर्क नहीं करता, उसकी मगफिरत कर दी जाती है, सिवाय उस बंदे के जो अपने और अपने मोमिन भाई के दरमियान कीना रखता। यानी दो लोगों ने अपने दरमियान कीना पाला हो तो कहा जाता है कि इसको छोड़ दो या मोहलत दे दो कि ये अपने आप को फिक्स कर ले, यानी आपस के अंदर लड़ाइयाँ हुई हुई हैं, नाराजगियाँ हैं, उनके बारे में कह दिया जाता है नहीं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन से ज़्यादा किसी मुसलमान से कतअ ताल्लुक को मना किया ना। और हम कीने पाले बैठे होते हैं, अब एट द कॉस्ट ऑफ दिस क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हम हमारी बख्शिश बेशक ना हो लेकिन कीना नहीं हमने छोड़ना। उसके लिए बोगस, उसके लिए फलानी ऐसी वो है, इतना बुरा कीना क्या होता है? कभी लोगों को पता भी नहीं होता कीना क्या है। मैं हदीस बताती जाऊं आप सोचें पता नहीं क्या चीज होती। ये जो दिल में इल फीलिंग्स है ना लोगों के लिए, वो ऐसा है, वो ये है, वो बुरा, उसके लिए दिल के अंदर गंदी ख्यालात रखे हुए, फलाने के लिए रखे हुए, फलां के लिए रखे हुए, उससे नाराज किया, उससे मुंह मोड़ा हुआ, उससे लड़ाइयां की हुई हैं, सारे कीने ही तो हैं। निकाल दें दिल से, क्या हमें अपनी बख्शिश चाहिए? इजी हो जाए, सिंपल हो जाए। अगर दिल में कोई बदगुमानी आती है उसको दूर कर लें, किसी को उठा के फोन कर लें। अगर किसी से कोई शिकवा है तो उसको छोड़ दें, फलाने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने मुझे फलाने वक्त में ही फोन नहीं किया था, वो आया नहीं था। ये आपको किससे मिलने का दिल चाहता है? चले जाएं उसके पास, गलत फहमियां दूर कर लें, वजाहत कर दें। कोई सवाल अगर दिल में है तो पूछ लें उससे, कोई बात तो उसकी नापसंद आई है तो क्लियर कर लें, अना को छोड़ देना। और अगर कोई माफी मांगे तो जरूर माफ कर दिया करें, ना अपने लिए मुश्किलें बनाए और ना दूसरों के लिए। तो कहीं इख्तलाफ हो गए हैं तो अभी थोड़ा सा टाइम दे, थोड़ा मामला ठंडे हो जाएंगे तो इख्तलाफ को दूर कर लीजिए। ये बताइए कि हशर के मैदान में आप क्या चाहते हैं, आप किसके पास हो, किसके करीब हो? आप जब इधर उधर देखें, इमेजिन करें आप इधर उधर देखें, किसके करीब होना चाहते हैं? कभी आपने सोचा ये बात? कौन आपके करीब 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 कौन खड़ा हो बताइए, सोच के बताएं। ये क्या ही बात हो ना कि हम नबी अलैहिस्सलाम की साइड पे खड़े हों, उनके करीब खड़े हों, कितनी खुशकिस्मती होगी। दुनिया में तो हम ये तमन्ना करते हैं ना, यह काश हम उनके जमाने पे पैदा हो जाते तो कितना मजा आता, मगर ये तो हो नहीं सका। अब क्या ख्याल है, हर कब्र से उठते ही उनका साथ मिल जाए और क्या चाहिए, वो करीब ही खड़े हों और क्या चाहिए, इमेजिन करें। तो आप क्या ऐसा नुस्खा जानना चाहते हैं कि उनके करीब हो जाएं उस दिन? तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए एक नुस्खा है और वो ये है कि अपने अखलाक अच्छे कर लें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़े कयामत मेरे सबसे करीब वो लोग होंगे, सबसे करीब, जिनके अखलाक उम्दा हों, जिनके पहलू नरम गुदा हों, यानी वो पोलाइट लोग हों, उनमें पोलाइटनेस हो, लोगों के साथ नरमी से बात करते हों, और वो दूसरों से मोहब्बत और उल्फत से पेश आते हों और दूसरे उनके साथ। जब आप जाहिर है दूसरों से मोहब्बत से पेश आएंगे, वो भी आपके साथ ऐसे ही पेश आएंगे। तिर्मिजी में एक और भी रिवायत है कि उम्दा अखलाक का मालिक, यानी जो अच्छे अखलाक वाला है, वो कयामत के दिन तुम्हें मेरे सबसे ज्यादा महबूब होगा, तुम सब में से, यानी मुझे जो सबसे ज्यादा महबूब होगा कयामत के दिन, वो अच्छे अखलाक वाला होगा और मेरे से सबसे ज्यादा वो करीब भी होगा। और वो जो बदखुल्क है, बदजुबान है, मुतकब्बिर है, वो उस दिन कयामत के दिन मुझसे सबसे ज्यादा दूर होगा और मेरे नजदीक सबसे ज्यादा मबगूज तरीन होगा। अल्लाह ना करें हम ऐसे लोगों में हो कि बद अखलाक, बद जुबान, तकब्बुर हमारे अंदर हो, अल्लाह ना करे। ये तो बहुत ही कीमती नसीहत है, हमें इस चीज को पल्ले बांध लेना चाहिए कि हमने किस तरह के अखलाक रखने हैं, और ऐसे हमारे अखलाक हो जाएं। अल्लाह से दुआ है, और आज की दुआ भी यही होगी कि हम हमारे अखलाक संवर जाएं, हम उन पे वर्क करें। ये सब चीजें अखलाक से ही मुतालिक है कि इंसान जो है कीना छोड़ दे, ये सब चीजें छोड़ दे। आज हम अपना दिन जो डेकोरेट करेंगे, तो जैसे कि हम यहां तक पहुंचे थे कि हमने कहा था कि इशराक से हमने जुहर तक की बात की थी, اور اس میں ہم نے چاشت کے یا ابوابین کے جو نفل ہیں وہ پڑھیں، اور دو نفل بے شک پڑھ لیں، یعنی آپ سو کے اٹھے آپ نے وہ دو نفل پڑھ لیے، اپنے جوڑوں کا صدقہ دے دیا آپ نے. اور ابوابین کے نوافل یہ کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ ابوابین کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنے والے، تو آپ رجوع کرنے والے ہو جاتے ہیں، آپ کا شمار غافلوں میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے جب یہ پڑھ لیے اور اس کے بعد گھر کے کام وام سمیٹ لیے، کوئی دورہ قرآن اٹینڈ کرنا تھا وہ کر لیا، اگر آپ مسجد جا کے کر سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ ایک جگہ ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث میں کہ جو خیر کی بات سیکھنے کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے تو اس کو ایک مکمل حج کے برابر اجر ملتا ہے. یا آپ کوئی بھی اور چیز، دورہ قرآن نہیں ہے تو کوئی بھی سیکھنے کے لیے کسی کلاس کے لیے مسجد جاتے ہیں تو اتنا اجر ہے. تو آپ نے یا اپنا حفظ کا لیسن ہے وہ ریوائز کیا ہے، یا آپ نے اپنے قرآن پاک کی تلاوت کر لی، جب تک ظہر کا وقت قریب آ گیا تو ہم نے مسواک کی. ٹوتھ برش کیوں نہیں کرنا، مسواک کیوں کرنی ہے؟ ٹوتھ برش بھی تو کر سکتے ہیں. اس خاص طور میں مسواک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کے لیے طہارت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس سے. کتنی آسان چیز ہے نا، اور اس سے اللہ کی رضا اگر مل سکتی ہے تو ہم کیوں نہ کریں. آپ دیکھیں جو بھی میں آپ کو اس پروگرام میں باتیں بتاتی ہوں نا، بہت سمپل ہیں، فیو منٹس کی کرنے والی ہیں. آپ نے اگر نفل پڑھے، دو نفل میں کتنی دیر لگ جاتی، کلو اللہ سے پڑھ لیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ بہت ہی لمبی لمبی تلاوتیں کر رہے ہیں. یا آپ اگر کوئی ذکر ہے یا دعا ہے یا یہ جو آپ کو میں اور چیزیں بتاتی ہوں، یہ بہت ہی کم ٹائم میں ہونے والی چیزیں، لیکن بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا، بعض دفعہ ہمیں علم ہی نہیں ہوتا، بعض دفعہ ہماری اپنی غفلت ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے کہ ہم نہیں کرتے، پرواہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، بڑے زیادہ بھاری بن سکتے ہیں اس دن ہمارے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آخری لمحات میں بھی تھے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ٹیک لگائی بھی تھی، ان کے بھائی تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی جس کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار دیکھ رہے تھے. تو حضرت عائشہ سمجھ گئی، انہوں نے اپنے بھائی سے مسواک لے کے نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. تو آپ کا آخری عمل بھی مسواک کرنا تھا. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پہ شفقت کی وجہ سے اس کو لازم نہیں کیا کہ فرض ہے تمہارے لیے کرنا، تاکہ امت کے اوپر مشکل نہ پڑ جائے، ورنہ فرمایا کہ اگر مجھے امت پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے اور مسواک کرنے کو حکم دے دیتا، تو تب فرض ہو جانا تھا، لیکن پھر سب کے لیے تو پاسبل نہیں تھا، اس لیے نہیں کیا. تو آپ ضرور کوشش کریں کہ کم از کم رمضان میں ہم مسواک کی تھوڑی سی، چلو دن میں ایک دفعہ مسواک کر لیں، آپ باقی ٹائم اپنا ٹوتھ برش کریں، لیکن مسواک ایک دفعہ تو ضرور کریں. اب آپ نے ظہر کی تیاری شروع کی ہے، اور ظہر پڑھنے کے بعد آپ کچھ دیر قرآن پڑھیں اور پھر ذرا کہلولہ کر لیں. دیکھیں یہ بھی سنت ہے اور رات کے قیام میں آپ کو ہیلپ کرے گی، ورنہ رات کو جب قیام کرنے لگتے ہیں تو جمائیاں آتی جاتی ہیں اور انسان منہ پھاڑ پھاڑ کے جمائیاں لیتا ہے، یہ پسندیدہ بات نہیں ہے. حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس وقت انسان کوشش کرے اس کو روکنے کی، یہاں آگے ہاتھ رکھے مگر منہ کھول کے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ انسان بے عزت ہو، کیونکہ کتنا برا لگتا ہے انسان ایسے منہ پھاڑے ہوئے. تو اس کے بعد آپ نے کلولہ کیا، اور پھر آپ نے یہی سوچ کے کیا کہ ایک تو یہ سنت بھی ہے، دوسرے میری عبادت میں مزید کانسنٹریشن ہوگی، تو یہ بھی آپ کو پھر یہ بھی آپ کی عبادت بن جائے گی اور پھر اس کا بھی ثواب ملے گا. اور پھر اثر جب ہوگی تو پھر آپ نے چار سنت کے ساتھ اثر پڑھی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پالیں، کیونکہ اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کی دعا کی ہے، تو آپ کی دعا تو رد نہیں ہوتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ پوری ہو، آپ کی دعا تو ضرور پوری ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمایا، تو آپ نے رحم اللہ تعالیٰ کے رحم میں آ گئے، اس کی رحمتیں آپ کو ڈھانپ لیں گی. آپ چار پڑھنی کون سی مشکل ہے؟ फिर आपने असर के बाद सुबह शाम की दुआएं पढ़ी, और फिर आपने उसके बाद फिर इफ्तारी का इंतजाम करना शुरू किया। क्योंकि इफ्तार में भी ये मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर पहले से आप थोड़ा सा तैयारी कर लें तो आपको वो जो लास्ट का टाइम है वो आपका किसी इस ऐसी चीज के अंदर ना लगे कि भागम दौड़न कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि याद रखिए कि इंसान जो उस वक्त आप कहते हैं ना, हम कोई बात नहीं, मैं साथ साथ दुआएं भी कर रही हूँ, नहीं, वो साथ साथ दुआएं होती ही नहीं है। इसलिए कि जब इंसान का जहन ही किसी चीज में लगा हुआ ना, किसी और चीज में, तो वो दुआ कबूल नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अल्लाह से दुआ मांगो और इस यकीन के साथ मांगो कि तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। जब इंसान को यकीन ना हो और इंसान ऐसे ही मांग रहा हो ना कि हाँ बस मांगते तो हैं, कौन सी कबूल होनी है, हमारे तो पहले भी नहीं कबूल हुए, तो ये फिर अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आती। तो आपके अंदर ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला सुन रहा है, वो जरूर कबूल करेगा। और ये फरमाया कि जान लो कि अल्लाह ताला बेपरवाही बेतवज्जो ही से मांगी हुई दुआ को कबूल नहीं करता, और गफलत और लहव लहव में मुबतला दिल की दुआ कबूल नहीं होती। दिल गाफिल है, दिल कहीं और पहुंचा हुआ है, आप खाना बनाने में और उसमें यानी इफ्तारी में आप मशगूल है, जहन उसकी तरफ है। अब आपको जो याद है दुआएं वो पढ़ती जा रही हैं, सामने बुक रखी हुई खोल के उसमें से पढ़े जा रही हैं, कुछ पता ही नहीं मांग क्या रहे हैं। जब यही नहीं पता मांग क्या रहे हैं तो कबूल कैसे होगी। तो इसलिए अपनी दुआओं के अंदर अगर आप चाहते हैं ना मेरी दुआ कबूल हो, तो आप अपनी दुआओं के अंदर दिल अपना हाजिर करें। आपको पता होना चाहिए आप क्या मांग रहे हैं। तो ये ठीक है, आपको बहुत सारी दुआओं की किताबें मिल जाएंगी, लेकिन जो भी कुरानी मसनून दुआ भी मांगे उसका भी तर्जुमा जरूर देख ले, आपको पता होना चाहिए मैं क्या मांग रही। इसी तरह आप अपने दिन को ऐसे डेकोरेट भी कर सकते हैं कि हर फर्ज नमाज के बाद आप आयतुल कुर्सी पढ़ लें। तो हदीस में आता है जो ऐसा करेगा उसके और जन्नत में दाखले के दरमियान सिर्फ मौत का पर्दा हायल है, यानी जो ही मरेगा उसी वक्त जन्नत का मेहमान बन जाएगा। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी जरूर पढ़ें, और यही कोशिश करें कि जब फर्ज नमाज पढ़ें थोड़ी देर उस जगह पर बैठे रहें, थोड़ी देर बैठ के अल्लाह का जिक्र करते रहें। जैसे आप तस्बीहात करते हैं, 33 दफ़ा पढ़ना है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर आप पढ़ते हैं, तो कुछ देर बैठ के आप ये जिक्र करते रहें। बाकी दिनों में ना सही अगर आपको नई फुर्सत मिलती, मगर कम अज़ कम रमज़ान में ज़रूर ऐसा करें। क्या मिलेगा वहां में बैठे रहने से, इस तरह क्या होगा इससे? मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हर काम करने पे अपने से सवाल करना, चाहे वो नेकी का ही काम क्यों ना, क्यों कर रही हूँ, क्यों बैठूं। इसलिए कि जब आप बैठे रहेंगे ना तो आसमान से फरिश्तों का नजूल होना शुरू हो जाएगा। कितने फरिश्ते, बुखारी की हदीस में आता है कि इतने फरिश्ते जो जैसे यानी कुछ फरिश्ते ऐसे हैं ना जो मजलिसों को जिक्र की मजलिसों को तलाश करते हैं और उसके लिए उतरते हैं, तो इतने फरिश्ते उतरते हैं कि जमीन व आसमान का खला उनसे भर जाता है। तो जब तक इंसान बैठा हुआ अल्लाह का जिक्र करता रहता है, ये फरिश्ते उतरते हैं और उसके लिए दुआएं करते हैं, और 3 दुआएं करते हैं। एक पहली दुआ, ए अल्लाह इसको माफ कर दे, दूसरी दुआ, अल्लाह इस पे रहम फरमा दे, तीसरी दुआ, अल्लाह इसकी तौबा कबूल कर ले। और फरिश्तों की भी तो दुआएं रद्द नहीं होती ना। जैसे मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ कि हम हर एक को कहते हैं भाई मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो। भाई आप उनकी दुआएं लें, वो दूसरे बंदे का तो पता नहीं याद भी रहता है या नहीं, आप फरिश्तों की दुआएं क्यों नहीं लेते? उनकी तो जरूरी कबूल होंगी। तो असल में सब कुछ गैब में है ना, वरना अगर हमारे सामने हो तो हम भाग भाग के ये सारे काम करें। तो कितना खुशकिस्मत है जिसके लिए फरिश्ते दुआएं करना शुरू कर देंगे, अल्लाह ताला इसको माफ कर दे, इस पे रहम कर दे, अल्लाह इसकी तौबा कबूल कर ले। लिहाजा थोड़ी देर के लिए नमाज के बाद बैठे रहें, उठ के फौरन भागे नहीं, आज की जो दुआ है वो इसी से मुतल्लिक है जो हमने आज बात की है, उसने अखलाक की। इसलिए कि बाज़ दफ़ा हम बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी हम बार बार फिसल जाते हैं, तो क्यों ना हम अल्लाह ताला से मांगे कि वो ही हमारे अखलाक दुरुस्त कर दे। तो दुआ में भी हम ये कहते हैं, अल्लाहुम्मा हदीनी लि अहसनिल आमाली व अहसनिल अखलाक। आप निकालें अपनी जो PDF है उसके अंदर 31 नंबर दुआ है ये, कि ए अल्लाह मुझे हिदायत दे, मेरी रहनुमाई कर अच्छे आमाल की तरफ और अच्छे अखलाक की तरफ, यानी इनकी तौफीक दे। ला यहदी लि अहसनिहा इल्ला अंता, ए अल्लाह इनकी तौफीक कोई नहीं दे सकता सिवाय तेरे, तू ही तौफीक दे सकता है। मैं तो बेबस हूँ, अल्लाह ताला मुझसे तो नहीं होता, अल्लाह तू ही मुझे तौफीक दे। वकीनी सईल आमाल व सईल अखलाक, ए अल्लाह मुझे बुरे आमाल से और बुरे अखलाक से बचा ले। ला यकी सईअहा इल्ला अंता, ए अल्लाह कोई भी बचा नहीं सकता इन बुराइयों से मगर तू ही बचा सकता। बहुत प्यारी दुआएं, बड़ी हम्बल ह्यूमिलिटी है इस दुआ में, बड़ी आजजी है कि इंसान अपने आप को कहता है अल्लाह मेरे से तो नहीं होता, अल्लाह तू ही तौफीक दे दे। और फिर इंसान अल्लाह ताला से मदद मांगता है ना जब, तो अल्लाह ताला जरूर उसकी मदद फरमाता है। और आप देखें इसी तरह जो एक और भी दुआ है, अगर आपको ये ज्यादा मुश्किल लगे या लंबी लगे तो वो भी है, लेकिन ज्यादा ये अखलाक के लिए ज्यादा ये बेहतर है। उसमें अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक वल आमाल वल अहवाई वल अदवा, के अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगती हूँ बुरे अखलाक से, बुरे आमाल से, बुरी ख्वाहिशात से, बुरी बीमारियों से। तो उसमें पनाह मांगी गई है बुरे अखलाक से, अगर इसके अंदर अच्छा अखलाक भी मांगा गया। और जो हमारी जरूरत है मीजान में वो बहुत भारी तुलेगा। और आज का जो जिक्र है वो जिक्र है जिसको अगर आपने दिल से समझ के अगर आपने किया तो नबी अलैहिस्सलाम खुद आपको हाथ से पकड़ के जन्नत में दाखिल कराएंगे। ये मैं नहीं कह रही, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमानत दी है, जमानत मेरी गारंटी है। क्या फरमाया कि जिसने सुबह के वक्त ये कलिमात कह दिए, रदीतु बिल्लाहि रब्बं व बिल इस्लामी दीनं व बि मुहम्मदिन नबियं, नबियों व रसूला भी आता है बाज रिवायत में, सिर्फ नबिया भी आता है, कि मैं अल्लाह के रब होने पे राजी हूँ, मैं इस्लाम के दीन होने पे राजी हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत पे राजी हूँ। तो जब आप राजी हो जाए ना, आप वाकई दिल से राजी हैं अल्लाह के हर फैसले पे, अल्लाह के हर हुक्म पे राजी हैं आप, इस्लाम मेरा दीन है इस पे राजी हैं, तो आप देखेंगे कि नबी अलैहिस्सलाम की बात से सच्ची बात किसी की नहीं हो सकती। तो 3 दफा पढ़ना ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है। और अल्लाह ताला का जिक्र वो है वो चीज़ है जो इंसान को अल्लाह से करीब करता है। इस तरह ही जब तिलावत कुरान करने लगे तब भी बड़े ज़ौक व शौक से करें, खुद से पूछें कि मैं क्यों तिलावत कर रही हूँ, और खुद को जवाब भी दें कि ये मेरा सिफारशी है कयामत के दिन का, ये मेरे लिए वहां झगड़ेगा, ये मेरी शिफात करेगा, ये मुझे वहां बख्शवाएगा, तो मैंने शौक से पढ़ना है, बोझ नहीं है ये। कि कोई भी नेकी बोझ समझ के ना करें, हर नेकी को मोहब्बत से आप शौक से करेंगे तब वो एक्सीलेंस के लेवल पे जाएगी, वरना बस नेकी हो तो जाएगी लेकिन बस वाजिबी सी, क्वालिटी नहीं रहेगी। तो इंशाल्लाह अब से क्वालिटी वाली नेकियां करनी है। अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह आज हमारे आमाल तेरे आगे पेश होने हैं, या अल्लाह जब हमारे आमाल तेरे आगे पेश हों तो तू हमसे राजी हो जाना और हमारी बख्शिश कर देना, और हमारी जो कमियां कोताहियां रह गई ना, जो हमारे बस ऐसे रद्दी किस्म के अमाल हैं, तू इन्हीं को कबूल फरमा लेना। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
और قبضت.